नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय गहन समुद्री बहुउद्देश्य बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के भारत का सपना प्रौद्योगिकी के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान से प्रेरित होना चाहिए। भारत और यूरोपीय संघ ने 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने की पुष्टि की है। दिल्ली NCR में भारी बारिश और आंधी से सामान्य जनजीवन प्रभावित। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस का मुकाबला आज शाम अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले अर्ध स्वचालित बंदरगाह विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय गहन समुद्री बहुउद्देश्य बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा है कि विझिनजाम बंदरगाह नए युग के विकास का एक बेहतरीन मॉडल है और ये देश और केरल के लिए बड़ी आर्थिक स्थिरता और लाभ लाएगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि विझिनजाम बंदरगाह पर वर्तमान ट्रांसशिपमेंट भविष्य में 3 गुना बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने बंदरगाह के संचालन भवन का दौरा किया और नियंत्रण प्रणालियों का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पनायक विजयन ने कहा है कि विझिनजाम बंदरगाह ने तीसरी सहस्राब्दी की विकास योजनाओं के लिए एक प्रवेश द्वार खोला है। विझिनजाम बंदरगाह के पहले चरण के निर्माण का बड़ा हिस्सा दिसंबर 2024 में पूरा हो गया था। विझिनजाम बंदरगाह जो केरल का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लगभग 3 दशकों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हकीकत बन रहा है। तिरुवनंतपुरम में विझिनजाम बंदरगाह का चालू होना भारतीय बंदरगाह इतिहास में एक प्रमुख घटना है, जिसे केरल को वैश्विक समुद्री मानचित्र पर स्थान दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचे। वे विजयवाड़ा से बेलावकापुरी जाएंगे, जहां वे राज्य की राजधानी अमरावती की निर्माण परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए की सड़क और रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल मीडिया डायलॉग आज सुबह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वेब समिट 2025 के हिस्से के रूप में शुरू हुआ। यह आयोजन वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ देश के जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कल शुरू हुए 4 दिवसीय वेब शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ग्लोबल मीडिया डायलॉग का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि तकनीक और परंपरा को साथ साथ चलना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का भारत का सपना तकनीक से प्रेरित होना चाहिए, लेकिन सांस्कृतिक पहचान पर आधारित होना चाहिए। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मीडिया और मनोरंजन उद्योग का मूल लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस आयोजन में 60 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल शामिल है। महिला उद्यमी नीति अंबानी ने पुनः सुने महिला उद्यमी नीता अंबानी ने कहा है कि भारत एक मानवतावादी देश है, जिसने अपने दर्शन, ज्ञान और शिक्षकों के माध्यम से दुनिया को बुद्धिमता दी है। वे आज मुंबई में वेब शिखर सम्मेलन के दौरान एक पैनल चर्चा को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे परिवार के लिए भावनात्मक स्तंभ की तरह काम करते हैं। राष्ट्रपति भवन में आज एजिंग विद डिग्निटी नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि समाज के मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सलाह महत्वपूर्ण होती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफकोविक ने 2025 के अंत तक भारतीय यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता FTA संपन्न करने के अपने साझा संकल्प को फिर से पुष्टि की है। कल बेल्जियम में ब्रुसेल्स में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों से निपटने के लिए एक दूरदर्शी और ठोस वार्ता की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने वार्ता को अधिक उत्तम उत्पादक बताया। उन्होंने कहा है कि बैठक में व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने, विश्वसनीय और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के विकास को गति देने के लिए साझेदारी को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले के खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने आज राजभवन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में युवा सशक्तिकरण, खेल विकास और श्रम संबंधी चुनौतियों पर चर्चा की। राज्यपाल ने खेल उत्कृष्टता और युवा गतिशीलता के उभरते केंद्र के रूप में अरुणाचल प्रदेश की बढ़ती प्रतिष्ठा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल के युवा ऊर्जा, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी, मार्शल आर्ट जिनमें ताइक्वांडो वुशु शामिल है और एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए गए हैं। राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से शहरों में बहु विषयक स्टेडियम के विकास और दूर दराज के गांवों में फुटबॉल और वॉलीबॉल मैदानों जैसे खेल बुनियादी ढांचे और तीरंदाजी सुविधाओं के विकास का समर्थन करने का आग्रह किया। साहसिक खेलों में अरुणाचली महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने गर्व से राज्य की 5 महिला पर्वतारोहियों तिने मीना, अंशु जमसेंपा, मुरी लिंगी, ताशी यांगजोम और काबाक यानो का उल्लेख किया, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। एंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंजाल्विस लोरेंको 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। उनका विशेष स्वागत किया गया तथा हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनकी अगवानी की। श्री लोरेंको के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है, जिनमें कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारिक घराने तथा मीडियाकर्मी शामिल हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रतिनिधिमंडल इसके लिए वियतनाम पहुंचा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल का वियतनाम सरकार द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ये साझा आध्यात्मिक मूल्यों और सहभागिता संबंधों का प्रमाण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली के मंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटर कनेक्टर सेवा देवी सेवा के तहत 400 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली सरकार की पहल की सराहना की। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह भारी बारिश और आंधी आई। हालांकि इससे गर्मी में काफ़ी राहत मिली, लेकिन बारिश के कारण जल भराव, पेड़ उखड़ने और यातायात बाधित होने की भी समस्या सामने आई। द्वारका क्षेत्र के खरखरी नहर गांव में खेत में बने ट्यूबवेल के कमरों पर पेड़ गिरने से एक महिला और उसके साथ 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि प्रतिकूल मौसम की वजह से उड़ान संचालन पर कुछ असर पड़ा है और सभी हितधारक यात्रियों को निर्बाध और कुशल अनुभव सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसने यात्रियों से नवीनतम उड़ान अपडेट के लिए अपना एयरलाइन से संपर्क करने का आग्रह किया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे दिल्ली भर में उन जगहों की पहचान करें जहां जल भराव हो रहा है और समाधान सुनिश्चित करें। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं के पूर्वानुमान के साथ राष्ट्रीय राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए IMD के मौसम विज्ञान महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की स्थिति रहने की उम्मीद है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग, ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, लोअर सुबनसिरी, अंजाव, तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हराया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।